सूरत मोमिनून की ही आयत 84 से 89 में है। मुशरिकों से कहो, बताओ अगर तुम जानते हो कि ये ज़मीन और जो कुछ इसमें है वो किसकी मलकियत है, ये ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह ताला की। कहो तुम होश में क्यों नहीं आते, इनसे पूछो सातों आसमान और अर्शे अजीम का मालिक कौन है, ये ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह ताला। कहो तुम डरते क्यों नहीं, इनसे कहो बताओ अगर तुम जानते हो तो बताओ हर चीज़ पर इक्तदार किसका है और कौन है जो पनाह देता है और इसके मुकाबले में कोई पनाह नहीं दे सकता, ये ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह। कहो फिर कहाँ से तुम धोखा खाते हो। सूरत अंबिया की आयत 21 से 22। क्या इन लोगों के बनाए हुए अर्जी यानी ज़मीन पर रहने वाले माबूत ऐसे हैं कि बेजान में जान डालकर उठा खड़ा करते हो? अगर आसमानों ज़मीन में एक अल्लाह तला के सिवा दूसरे माबूद भी होते तो ज़मीन और आसमान दोनों का निज़ाम बिगड़ जाता, बस अर्श का मालिक अल्लाह ताला है इन बातों से जो ये लोग बना रहे हैं। और आखिरी आयत इस बाब की आयत नंबर 61 है सूरत नमल की। वो कौन है जिसने ज़मीन को जय करार बनाया और इसके अंदर दरिया रवां किए और इसमें पहाड़ों की मेहें गाड़ दीं और पानी के दो ज़खीरों के दरमियान पर्दे खायल कर दिए? क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी इन कामों में शरीक है? नहीं, बल्कि इनमें से अक्सर लोग नादान हैं। आप इन आयतों को पढ़ते हुए ये बात सोच रहे थे जो मैं सोच रही थी, शायद आपके भी जहन में आई हो, कि कुरान पाक कितना खुल के बयान करता है ना शिर्क और तौहीद के फ़र्क को, और ये तो सिर्फ चंद चीदा चीदा आयते हैं ना। कुरान पाक का तकरीबन 2/3 हिस्सा जो है ना वो सिर्फ शिर्क और तौहीद के फ़र्क को बताता है। जो सोच मुझे आती है इन आयतों को पढ़ते हुए वो क्या है कि आखिर वो लोग जो दीन के नाम पे भी शिर्क करते हैं वो इन आयतों को कैसे समझते हैं? आप देखिए कि बाज़ दफ़ा शिर्क जो है वो मज़हबी रहनुमाओं की कस्टडी में होता है, उनकी मतलब उनके क्या कहना चाहिए कि अंडर शिरकिया रसूमात होती हैं। बाद लोग दीन का नाम भी ले रहे होते हैं और साथ गैरों से मदद मांगना भी सिखा रहे होते हैं। इसकी वजह क्या है ये इंशाल्लाह आज हम अपने जो आखिरी टॉपिक होगा उसमें देखेंगे कि जब इंसान एक रास्ते पे चलता है ना फिर अल्लाह ताला उसके लिए वही रास्ता आसान कर देते हैं। वल्लाहु यहूलु बैनल मरी व कल्बी, अल्लाह ताला बंदे और उसके दिल के बीच में हायल हो जाता है, फिर समझ ही नहीं आने देता। जो तुम कर रहे हो करते रहो, आप जो काम करना चाहते हैं ना अल्लाह ताला आपके लिए वही आसान करता है। बस आप यहाँ आज बैठे हुए हैं तो आपके लिए बैठना आसान है, और अगर आप इस वक्त बाज़ार में घूम रहे होते, इरादा करते तो आप बाज़ार में घूम रहे होते। तो जो मुशरिक होता है ना वो चीज़ को जैसे देखता है उसको वैसे ही लगने लगती है। तो ये थी कुरान पाक की आयतें। अगले चैप्टर में आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत रिवायतें अल्लाह के नबी सल्लम के फरामीन की रोशनी में शिर्क को हम समझेंगे। आज शिर्क कुफी दो इस सुन्ना, शिर्क सुन्नत की रोशनी में। कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। दलील, अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाहु अन्हों से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह से पूछा अल्लाह ताला के नज़दीक कौन सा गुनाह सबसे बड़ा है? आपने इरशाद फरमाया ये कि तू अल्लाह के साथ शिर्क करे हालांकि इसने तुझे पैदा किया। अब्दुल्ला कहते हैं मैंने अर्ज़ किया हाँ वाकई ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। फिर मैंने अर्ज़ किया शिर्क के बाद कौन सा गुनाह बड़ा है? आपने इरशाद फरमाया फिर ये कि तू अपनी औलाद को इस डर से कत्ल करे कि वो तेरे साथ खाना खाएगी। फिर मैंने अर्ज़ किया इसके बाद तो आपने फरमाया कि तू हमसाए की बीवी से जिना करे। तो अकबरुल कबायर में शिर्क आता है, क्योंकि जिसने मालिक को नहीं पहचाना उसने किसी और को क्या पहचानना है। तो पहली चीज़, पहली खबरा बीमारी जिसकी इसलाह की जानी चाहिए वो ये है कि दिल को शिर्क से पाक किया जाए। शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। दलील, सही बुखारी की रिवायत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाहु अन्हों से। कहते हैं जब सूरत अलनाम की आयत अल्लसीन आमनू वलम यलबिसू नाजिल हुई, यानी वो लोग जो ईमान लाए और अपने ईमान के साथ जुल्म को मुलव्वस नहीं किया, नाजिल हुई तो सहाबे किराम पर बड़ी गिरां गुजरी यानी बहुत बोझल लगी। कहने लगे, उन्होंने कहा हम में से कौन ऐसा है जिसने ईमान लाने के बाद कोई जुल्म यानी गुनाह न किया हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आपने फरमाया इस आयत में जुल्म से मुराद आम गुनाह नहीं बल्कि शिर्क है। क्या तुमने कुरान मजीद में लुकमान का कौल नहीं सुना, जो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि शिर्क सबसे बड़ा गुना जुल्म है। इसे बुखारी ने रिवायत किया। यानी शिर्क को जुल्म क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें बंदा अल्लाह का हक किसी दूसरे को देता है। शिर्क अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला गुना है। इस बात की शिद्दत को महसूस करें, अल्लाह को तकलीफ़ होती है मेरे किसी काम से कि जो बेनियाज है, कितनी बुरी बात होगी वो जिसकी वजह से अल्लाह को तकलीफ़ हो। दलील है इसकी अबू मूसा अलअशरी से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकलीफ़ दे बात सुनकर अल्लाह ताला से ज़्यादा सब्र करने वाला कोई नहीं। मुशरिक कहते हैं अल्लाह ताला की औलाद है, फिर भी अल्लाह ताला इन्हें आफियत में रखता है और रोज़ी देता है। इसे सही बुखारी ने रिवायत किया। इसे बुखारी ने रिवायत किया, यानी अल्लाह को तकलीफ़ होती है इस बात पे कि लोग अल्लाह की औलाद करार दें। शिर्क करने वाला अल्लाह ताला को गाली देता है। क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला मुशरिक को इसके नेक आमाल का बदला देने से इनकार कर देगा। दलील है मुस्नद अहमद की रिवायत महमूद बिन लुबैद रदी अल्लाह अन्हो से। सहाबे कराम ने ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम्हारे बारे में मुझे जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर है वो शिर्क असगर है। सहाबे कराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, शिर्क असगर क्या है? आपने फरमाया, क़यामत के रोज़ जब लोगों को इनके आमाल का बदला दिया जा रहा होगा, तो अल्लाह ताला रिया में मुब्तला लोगों से कहेंगे, जाओ इन लोगों के पास जिनको दिखाने के लिए तुम नेक अमल किया करते थे, और फिर देखो इनसे तुम क्या जज़ा पाते हो। इसे अहमद ने रिवायत किया। शिर्क इंसान को हलाक कर देने वाला गुनाह है। दलील सही मुस्लिम की रिवायत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से, आपने फरमाया, हलाक करने वाले 7 गुनाहों से बचो। सहाबे कराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, वो 7 गुनाह कौन से हैं? आपने फरमाया, अल्लाह के साथ शिर्क करना, जादू, नाहक किसी जान को कत्ल करना जिसे अल्लाह ताला ने हराम ठहराया है, यतीम का माल खाना, सूद खाना, मैदान जंग से भागना और भोली भाली औरतों पर तोहमत लगाना। एक एक गुनाह पे अगर आप रुक के देखें तो आज ये गुनाह कितने आम है, और ये कबीरा गुनाह है। सगीरा गुनाहों की तो बात नहीं की जा रही, और इंसान खुद को खुद ही हलाक कर लेता है। रसूल अकरम ने मुशरिकों के लिए बददुआ फरमाई। यहाँ पे रुक के सोचिएगा कि अमूमन ऐसे लोग अल्लाह के नबी की सिफारिश की उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि हम जो भी शिरकिया काम कर लें, लेकिन अल्लाह ताला हमें इसके बदले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से बचा लेगा। लेकिन अल्लाह के नबी बददुआ करते हैं। कैसे? अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने बैतुल्ला शरीफ की तरफ मुंह किया और कुरैश के 6 आदमियों के लिए बददुआ फरमाई, जिनमें अबू जहल, उमैया बिन खल, उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, ये दोनों भाई थे, और उकबा बिन अबी मोईद शामिल थे। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने इन लोगों को बदर के मैदान में इस हाल में देखा कि धूप से इनके जिस्म सड़े हुए थे, क्योंकि वो बहुत गर्म दिन था। यदि आपने इनको बददुआ दी और ये सब दुनिया में ही उस बददुआ के नतीजे में मैदान बदर में मारे गए और बदर के कुएं में फेंके गए। इससे पता चलता है कि अल्लाह के नबी की जिस तरह दुआ कबूल होती है, इसी तरह बददुआ भी कबूल होती है। फिर अगला मसला है, मुशरिक को ईसाले सवाब का कोई अमल फ़ायदा नहीं पहुंचाता। यानी जो शिर्क पे मरता है ना, बाद में लोग उसके लिए जितनी मर्ज़ी नेकियां करें, कुछ पढ़ के भेजें, कुछ सदका खैरात करें, उसको किसी चीज़ से फ़ायदा नहीं होता। शिर्क करने वाला कतई जहन्नमी है। दलील सही बुखारी की रिवायत अब्दुल्ला बिन मसूद से, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शख्स इस हाल में मरे कि अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को शरीक बनाता था, तो वो आग में दाखिल होगा। और आपको पता है कि शिर्क की वजह से लोग जन्नत या जहन्नुम के अंदर जाने का उनका फैसला होगा। मुशरिक जो है ना, वो तो जहन्नुम में गए, अब अल्लाह ताला उनका मामला बेहतर जानता है। बस तौहीद वाले यानी अल्लाह को एक मानने वाले भी जहन्नुम में जाएंगे, लेकिन वो फिर बिलाखिर अपने आमाल की सज़ा भुगतते हुए या फिर अल्लाह ताला के माफ़ करने पे वहाँ से निकाल दिए जाएंगे। और हत्ता कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, अल्लाह ताला उसको भी निकाल देंगे। और इसी मंज़र को देख के मुशरिक कहेंगे, जिसका ज़िक्र सूरह हिजर की बिल्कुल शुरू की आयतें 14वें पारे की इब्तदाई आयात में आता है कि रुबमा यवदुल्लज़ीना कफरू लव कानू मुस्लिमीन। वो वक्त आने वाला है कि जब काफिर लोग कहेंगे कि काश हम भी मुसलमान होते, दूसरों को जब निकलता देखेंगे तो कहेंगे काश आज हमें भी कोई उम्मीद होती। और कितना दिल डूबता है ये सोच के कि किसी को कभी भी ना निकाला जाए। आप जब इस फीलिंग के साथ दुनिया में बाहर निकलते हैं, घूमते फिरते हैं, तो आप पिकनिक स्पॉट्स पे खुश नहीं आते? आप लोगों को हंसते बोलते खाते पीते मौज मस्ती करते देखते हैं, आपकी निगाहें उस पर्दे के पार देख रही होती हैं जो इस कयामत के बाद आने वाला है। दिलों के भेद अल्लाह को पता है। हम इनफरादी तौर पे किसी को नहीं कह सकते कि इस फलां मुशरिक के साथ ये होगा। हमें नहीं पता उसके दिल में क्या है, हमें नहीं पता उसको अल्लाह ने तौबा की तौफीक दे देनी है या उसको अल्लाह ताला ने मौत से पहले सही रास्ते पे लाना है। लेकिन मजमूई तौर पे कुलिया और कायदा यही है कि जो शिर्क पे मरा फिर उसको हमेशा की जहन्नुम मिलेगी। किसी नबी या वली के साथ करीबी ताल्लुक भी मुशरिक को जहन्नुम के अजाब से नहीं बचा सकेगा। इसकी दलील हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है सही बुखारी में, और आपको मालूम है कि अहादीस की सनद में सबसे आला दर्जे की रिवायत सही बुखारी की रिवायत होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन अपने बाप आज़र को इस हाल में देखेंगे कि इसके मुंह पर स्याही और गर्दो गुबार जमा हुआ होगा। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे, मैंने दुनिया में तुम्हें कहा नहीं था कि मेरी नाफ़रमानी ना करो? आज़र कहेगा, अच्छा आज मैं तुम्हारी नाफ़रमानी नहीं करूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब से दरख्वास्त करेंगे, ऐ मेरे रब, तूने मुझसे वादा किया था कि तुझे क़यामत के रोज़ रुसवा नहीं करूँगा, लेकिन इससे ज़्यादा रुसवाई और क्या होगी कि मेरा बाप तेरी रहमत से महरूम है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, मैंने जन्नत काफिरों पर हराम कर दी है। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ इब्राहीम, तुम्हारे दोनों पाँव के नीचे क्या है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम देखेंगे कि गलाजत में लतपत एक बिज्जू है जिसे फरिश्ते पाँव से पकड़कर जहन्नुम में डाल देंगे। अस्तग़फिरुल्लाह। यानी बाप को अजाब तो होगा लेकिन उसकी शक्ल बदल दी जाएगी ताकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शर्म ना आए कि मेरा बाप आग में जा रहा है। कितना सोचने का नुक्ता है ना। आज लोग किसी रिश्तेदार से ताल्लुक़ जोड़ लेते हैं सिर्फ इस नेकी पे कि ये नेक है, देखना इसकी नेकियां भी हमारे काम आ जाएंगी। शिर्क होगा तो फिर नेकियां नहीं मिलेंगी। अल्लाह ताला हमें ज़ाहरी बातनी ढके छुपे हर तरह के शिर्क से महफूज रखे। क़यामत के रोज़ मुशरिक रुए ज़मीन की सारी दौलत देकर जहन्नुम से निकलना चाहेगा लेकिन ऐसा मुमकिन ना होगा। दलील सही बुखारी की रिवायत अनस बिन मालिक से, अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला उस दोज़खी से फरमाएगा जिसे सबसे हल्का अज़ाब दिया जा रहा होगा, क्या कहेगा कि अगर तेरे पास इस वक्त रुए ज़मीन की सारी दौलत मौजूद हो तो क्या तू अपने आप को आज़ाद कराने के लिए दे देगा? वो कहेगा, हाँ ज़रूर दे दूँगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, दुनिया में मैंने तुझसे इसकी निस्बत बहुत ही आसान चीज़ का मुतालबा किया था, वो ये कि मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराना, लेकिन तूने मेरी बात न मानी और मेरे साथ शिर्क किया। यानी वहाँ इतने फयाज होंगे कि सारी दुनिया की दौलत दे दें हमें आग से, अल्लाह ताला छोड़ दे बचा दे, लेकिन उसको कबूल नहीं किया जाएगा। मुशरिक से दीनी उमूर को मुतासिर करने वाले ताल्लुकात रखने मना है। यानी वो ताल्लुक जिसकी वजह से आपका दीन बदलने लगे या आप उसके इन्फ्लुएंस में आने लगे, आप उसकी बातों से मुतासिर होने लगे, ऐसा ताल्लुक मुशरिकों से नहीं रखा जा सकता। और ये मसला ख़ास तौर पे यहाँ रहने वाले लोग जो बहुत सोसाइटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, स्कूलों में, कॉलेजेस में, जॉब्स पे, उनको ये बात बहुत ही फ़ायदा देगी। रिवायत है निसाई की, जरीर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैं अल्लाह के नबी की खिदमत में हाज़िर हुआ, आप लोगों से बैत ले रहे थे। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, अपना हाथ आगे बढ़ाइए ताकि मैं आपकी बैत करूँ। हाँ मुझे शराइत बता दीजिए क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। आपने इरशाद फरमाया, मैं तुझसे इन शराइत पर बैत लूँगा। क्या? नंबर एक, तो अल्लाह की बंदगी करे, नमाज कायम करे, ज़कात अदा करे, मुसलमानों की खैर ख्वाही करे और मुशरिक से अलग रहे। मुशरिक से अलग रहने से मुराद क्या है कि जहनी दूरी हो। देखिए कि ताल्लुकात की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। एक किस्म होती है जिसको हम कहते हैं मवासात, हमदर्दी का ताल्लुक। आप अपने नेबर में देखते हैं कोई बूढ़ी खातून है, बेचारी अकेली है, आप उनकी खिदमत करना चाहते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। किसी मुशरिक को परेशानी में देखते हैं, आप उसकी मदद कर देते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। तो मवासात का ताल्लुक जायज़ है। ताल्लुक का दूसरा दर्जा होता है मुआमलात का, डीलिंग्स, गिव एंड टेक। सारा दिन आप चीज़ें खरीदते भी रहते होंगे, देते भी होंगे, स्टोर्स में जाते हैं, वो सब नॉन मुस्लिम है। आप अपनी पसंद की चीज़ लेते हैं, उनको पैसे देते हैं, बिल्कुल जायज़ है, कोई बुरी बात नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ऐसा होता था। जो चीज़ मना है ना, वो विलायत मना है, जिसको कुरान पाक में विलायत कहा गया और बेताना कहा गया। बेताना बतन से है, बतन पेट को कहते हैं, पेट कहते हैं उस चीज़ को जो छुपा ले, यानी ऐसी दोस्ती कि जिसमें आपका और उसका राज छुप एक हो जाए, हम राज, कि जिससे आपकी इतनी गहरी दोस्ती हो जाए कि फिर आप उसकी मोहब्बत में गलत काम भी करना पड़े तो उसको भी करें, ये मना है। इसके अलावा ताल्लुकात किए जा सके, वो आपको हाय कहते हैं ना, तो आप इनको हाय कह दें, कोई हर्ज नहीं। वो बाय कहते हैं, आप उनको बाय कह दें। वो स्माइल देते हैं, आप उनको स्माइल दे दें। बल्कि अपना इखलाक ऐसा रखें कि वो आपके इखलाक से मुतासिर होकर दीन की तरफ आए। लेकिन जहाँ बात आएगी नज़रियात की, जहाँ बात आएगी उनके तौर तरीकों की, उसको नहीं मानना। क्योंकि जिस इंसान का दिल दूर होता है ना, वो उसकी दीवी चीज़ भी नहीं लेता। मैंने देखा है कि लोगों के अच्छे दिनों के जो ताल्लुकात के लेन देन होते हैं ना, किसी रिश्ता या मंगनी टूटने की वजह से वो उनके दिए हुए कपड़े भी वापस कर देते हैं। कहते हैं हमें नहीं चाहिए इनके कपड़े, हम नहीं पहनते इनके दिए हुए कपड़े। क्यों? दिल बदल गया ना। अब एक दिल खट्टा हुआ तो आप उसके दिए हुए तोहफे नहीं ले सकते। तो जब मुशरिक से दिल खट्टा होगा तो क्या आप उसके साथ हंस बोल सकते हैं? आपको लगे कि ये बंदा अल्लाह को नहीं मानता, मेरा रब, इतना प्यारा रब, इतना कुछ देने वाला रब, ये उसको नहीं मानता, खुद ब खुद फासले बनने लगते हैं। तो लिहाजा ज़रूरत है कि अपना ताल्लुक बिल्ला मजबूत किया जाए। जितना आपको अल्लाह का कुर्ब आएगा ना, उतना ही आप इंशाल्लाह ताला इस मामले में ज़्यादा आपका जहन खुलता जाएगा। बस अगर कोई हमारे सामने हमारी माँ को बुरा के, मतलब कोई के मैं तुम्हारी माँ से तो मुझे बहुत ही नफरत है या मुझे बड़ी चिढ़ है, क्या हम उस कहने वाले से खुशी महसूस कर सकते हैं? कभी भी ताल्लुक अच्छा नहीं रखेंगे। तो माँ को कोई बुरा कहे तो वो हमें बुरा लगे, हमारे शौहर को कोई बुरा कहे तो हमें बुरा लगे, लेकिन जब कोई हमारे रब के बारे में कोई नाज़ेबा बातें करे तो क्या फिर हम उसको पसंद करेंगे? आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, ऐसी जगह जहाँ शिर्क किया जाता था या किया जाता हो, वहाँ जायज़ इबादत करना भी मना है। और इसकी दलील बहुत ही खूबसूरत हदीस है, अबू दाऊद की रिवायत है, साबित बिन दहाक रदी अल्लाह अन्हों से, एक शख्स ने अल्लाह के नबी के ज़माने में बवाना नामी जगह पर ऊँट ज़िबा करने की नज़र मानी। वो अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि मैंने बवाना पर ऊँट ज़िबा करने की नज़र मानी है, अपनी नज़र पूरी करूँ या ना करूँ? यानी इस्लाम कबूल करने से पहले ये नज़र मानी थी कि फ़लाँ वादी, ये मक्का के करीब एक वादी है, वहाँ जाके एक ऊँट ज़िबा करूँगा। आपने दरियाफ्त फरमाया, क्या वहाँ ज़माने जाहिलियत में कोई बुत था जिसकी पूजा की जाती हो? सहाबे कराम ने अर्ज़ किया कि नहीं। तब आपने पूछा, क्या वहाँ मुशरिकीन का कोई मेला लगता था? सहाबे कराम ने अर्ज़ किया कि नहीं। तब आपने इरशाद फरमाया, अपनी नज़र पूरी करो और याद रखो, अल्लाह ताला की नाफरमानी वाली नज़र पूरी करना जायज़ नहीं, ना ही वो नज़र जो इंसान के बस में ना हो। बात वाज़े? यानी किसी जगह कोई बाबरकत, बाज़ लोग कहते हैं फलां कुआं बड़ा बाबरकत है, उस कुएं के पास जाके उसकी जुएं भी देखते हैं और वहां जाके किसी कुएं के साथ गुसल करने को बाबरकत समझते हैं, कहीं कोई दरख्त होता है, कहीं कुछ, यानी शिर्क फैलता है ना, तो अमूमन ना ऐसी बेजान चीज़ों से भी फैलता है। बाज़ लोग किसी दरख्त को बाबरकत समझ लेते हैं, मसलन जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हों ने देखा एक शख्स को कि मक्का और मदीना के रास्ते में एक दरख्त था, तो वहाँ बड़े तपाक से इबादत कर रहा है। तो इन्होंने पूछा कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो? तो कहने लगा कि ये वो दरख्त है जिसके नीचे बैते रिजवान हुई थी। सुलह हुदैबिया के मौके पे एक मौका ऐसा बना था कि हज़रत उस्मान गनी के कत्ल की खबर फैल गई, इंशाल्लाह सीरा की क्लास में आप पढ़ेंगे। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये है कि वहाँ एक बैत हुई थी जिसमें सहाबा कराम ने बैत की थी। तो कहने लगा कि ये दरख्त बड़ा बाबरकत है, तो मैं इसके नीचे इसलिए दुआ इबादत कर रहा हूँ कि यहाँ मेरी दुआएं ज़्यादा कबूल होंगी। तो हज़रत उमर को इतना गुस्सा आया, उन्होंने सारे दरख्त वहाँ के कटवा दिए और कहने लगे, तुम इतने साल के बाद इस दरख्त को कैसे पहचानते हो? हम तो सुलह उदैबिया के ठीक अगले साल उमरतुल कज़ा के लिए गए थे, हम में से तो कोई उस दरख्त को नहीं पहचानता था। इस्लाम में ये है ही नहीं। इस पर एक बड़ी प्यारी बुक भी है तबरुकात के नाम पे, कि क्या चीज़ें बाबरकत हो सकती हैं, जगहें, चीज़ें, इंसान, किससे बरकत ली जा सकती है? जिसको अल्लाह के नबी ने या अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बता दिया, इसके अलावा और किसी से नहीं। जी आप पहले इनका सवाल पूछ लो। जी प्लीज़।
पूछना था कि आजकल कई चर्च होते हैं जिनको मस्जिद बना दिया जाता है, तो उसके बारे में क्या है?
पहले चर्च थे और अब
मस्जिद
मस्जिद
बना
है,
दिया जाता है।
यानी परमानेंटली मस्जिद बन गई,
हाँ जी,
कोई
परमानेंट।
हर्ज नहीं है। देखिए, ज़मीन तो अल्लाह की है। इवन चर्च के अंदर अगर वहाँ वो कुछ भी करते रहें, लेकिन बाहर अगर वहाँ कोई बुत नहीं लगा हुआ या तस्वीरें नहीं, तो आप नमाज़ पढ़ सकते हैं जाके अपने ही तौर पे। लेकिन अगर वहाँ कुछ ऐसे शवाहद हैं या जैसे शुबा लगे, इश्काल पैदा हो कि आपने शायद उनके तरीके से इबादत की है, तो इवॉइड करना बेहतर है। लेकिन अगर मस्जिद बन चुकी है, तो फिर तो कोई हर्ज की बात नहीं है। जी अब आप बताइए।
मैं वो दरख्त के बारे में ही बात करना चाहती थी ना, कि इस दो से 3 हफ्ते पहले ना हम गए थे तुर्की वैसे सैर करने के लिए, तो हजरत अयूब अंसारी की कब्र पे ना उन्होंने एक दरख्त है, तो इस दौर में भी ना वहाँ जिनकी नई शादी होती है ना, तो वो आते हैं आके अपनी शादी की लंबी उम्र के लिए वहाँ दुआ करते हैं। इस जमाने में भी ना ये तुर्की
जी,
में,
बहुत सारे बिदात तो हर जगह, आप अपने मुल्कों में तो जाके देखें क्या कहानियाँ होती हैं। तो बहरहाल बात यही है कि जिसने देखिए कि जितना आप इल्म के साथ जुड़ते हैं, उतना ही फ़ायदा होता है। अब ये जो हम इस बुक से अहादीस पढ़ रहे हैं या किताबों दुआएं पढ़ रहे हैं या आयतें पढ़ रहे हैं, ये सारी इकट्ठी पढ़ने से जहन खुल रहा है ना। कितनी बंद गुत्थियाँ हैं जो खुलती हैं दिमाग की। और अगर हम यहाँ ना बैठते, मुझे लगता है कि बैठना मुश्किल होता होगा, यकीनन जब इंसान बैठता है, लेकिन अगर हम ना बैठते तो ये इतने मुख्तसिर से वक्त में हमें इतनी बातें कैसे पता चलती। अभी तो सिर्फ हम इसको एक थॉरली पढ़ रहे हैं ना, इनमें से हर बात की आगे फिर डिटेल्स हैं। कभी ज़िंदगी रही, और इंशाल्लाह जब आप कुरान पाक का सिलसिला शुरू करेंगे, जिसमें पूरा तरतीब से कुरान पढ़ेंगे, ये एक एक आयत जो हमने यहाँ पढ़ी है, इस पर पूरा पूरा दिन बात होती है, एक पूरा पीरियड होता है, एक ही आयत पर कई दफ़ा बात होती है। तो इसीलिए तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। सूरह फातिर की आयत है कि क्या इल्म वाले और बग़ैर इल्म वाले बराबर होते हैं। जी
सवाल ये कुछ मजहबा करने का, ये कुछ लोग अभी हम तो नहीं जाते, लेकिन बचपन में हमें भी साथ ले गए थे कुछ लोग, के बुजुर्गों की कब्रों पर जाके जो है ना के बकरे ज़बह करना ना, कुछ मन्नत मान लेते हैं कि मेरे घर बेटा हुआ तो फलां बुजुर्ग की कब्र पर जाके ना बकरा चढ़ाएंगे, वहाँ जाके ज़बह करेंगे, तो लड़कियों को ले जाते हैं और
जी, यानी कब्र वाले को खुश करने के लिए बकरा ज़बह करना।
नहीं वैसे मन्नत मानी होती है कि ये ना ये अगर बेटा हुआ तो वहां पे जाके बकरा जो है ना
वहीं जाके क्यों
चढ़ाएंगे।
करेंगे ना।
हाँ वही
आप
करेंगे।
देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लम ने कितनी तहकीक की ना सहाबी से, कि आपने बवानावादी की ही नीयत क्यों की थी। उन्हें कैसे, क्योंकि जब बंदा मुश्किल में फंसा होता है ना, तो उसका दिल करता है ज़रा मुश्किल से नेकी करूँ ताकि शायद मैं बच जाऊँ। तो उन्होंने ऐसे ही कह दिया, यहाँ नहीं वहाँ। अच्छा वहाँ, अच्छा वहाँ कोई दरख्त है जिसकी लोग पूजा करते हैं? नहीं। अच्छा वहाँ कोई कुआँ है जिस कुआँ है यानी कोई वेल है, कुआँ है जिसकी लोग बड़ी को बाबरकत समझते? कहा नहीं। कहा ऐसा नहीं है तो जाओ फिर कर लो।
तो
यानी
मैंने
जी
उनसे वो कहा कि मैंने कहा कि देखो अगर अल्लाह ताला के नाम का ज़बह करना है बकरा, तो हम जहाँ भी मतलब अपने घर में ज़बह कर सकते हैं,
अल्लाह ताला
अल्लाह
तो
का
हर
ज़बह
जगह ही
करना
है ना।
जरूर, अल्लाह ताला के नाम का ज़बह करना, तो वो जहाँ भी आप ज़बह कर
जी बिल्कुल।
सकते
देखिए असल बात इल्म की, ऐसे
हैं।
लोगों के
मैं
लिए
क्या
दुआ किया
सोचती हूँ,
करें,
मतलब सोचना चाहिए वैसे।
हमदर्दी के साथ बड़ी खैरख्वाही के साथ दुआ किया करें, बड़ी मोहब्बत रख के उनके लिए दिलों में, कि अल्लाह ताला जो बात हमें समझ आ गई है उनको भी आ जाए। आएगी इंशाल्लाह, हमारे जहन में अल्लाह ने डाल दी है तो दूसरों के भी डलेगी। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। सवाल जवाब बाहर में, आखिरी दिन जब कोर्स ख़त्म हो गया ना, फिर सारा दिन सवाल जवाब करेंगे, लिखते जाएं अपने सारे छोटे छोटे सवाल।